सोमवार 13 जुलाई दिनभर के साथ मैं निखिल रंजन। ग्रीस को राहत देने पर यूरोजोन में बनी सहमति, प्रधानमंत्री सिप्रास ने कहा निबट गया संकट।
सिंफोनिया इन दिस्कोले ओमोस अपोत्रेप्सामे तिन एपिडियोक्सी या मेटाफोरा।
व्यापम घोटाले की जांच करने सीबीआई की टीम पहुंची भोपाल, एसटीएफ सौंपेगा 10 टन दस्तावेजों का पुलिंदा। जनसंख्या के आंकड़ों में जाति आधारित ब्यौरा नहीं देने से नाराज हैं लालू प्रसाद, पटना में निकाला मार्च।
मंडल कमांडर के विरोध में लड़ाई होगी, सारे कमांडर को हम लोग फोड़ देंगे, वोट से।
पाकिस्तान में पहली बार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बनाया गया मलिक। आपकी चिट्ठियों के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन सबसे पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास तीसरे बेलआउट पैकेज के लिए खर्च में कटौती की कड़ी शर्तों पर सहमत हो गए हैं। ब्रुसेल्स में लंबी चली बैठक के बाद ग्रीस और यूरोजोन नेताओं के बीच समझौते पर सैद्धांतिक सहमति बन पाई। एथेंस को टैक्स में बढ़ोतरी, पेंशन में कटौती, श्रम कानून में बदलाव और कर्ज चुकाने के लिए एक समर्पित फंड बनाने की शर्तों को लागू करना होगा। इसके बदले में अगले 3 साल में करीब 95 अरब डॉलर की मदद ग्रीस को दी जा सकती है। ग्रीस की संसद में इस प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद तीसरे बेलआउट पैकेज पर आगे बातचीत होगी। एलेक्सिस सिप्रास ने कहा कि ग्रीस ने कड़ी लड़ाई लड़ी है, लेकिन आगे के फैसले मुश्किल भरे होंगे। वहीं यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने फैसला लिया है कि बुधवार से पहले ग्रीस के बैंकों को आपात मदद नहीं दी जाएगी। सर्बिया के शहर ओम्स्क में रूसी सेना के बैरक्स का एक हिस्सा गिर पड़ा। सेना की एक 4 मंजिला इमारत में छेद हो गया, जिससे ये हादसा हुआ। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर इगोर नाशेनकोव ने कहा कि इस घटना में 20 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई है। सभी 42 सैन्य कर्मियों को मलबे से निकाल लिया गया है, जिनमें 23 की मौत हो गई है। 19 सैन्य कर्मियों को अस्पताल ले जाया गया है। जिन सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं, उनका ट्रेनिंग सेंटर में ही इलाज किया जा रहा है। जख्मी सैनिकों को सेना के विमान से मॉस्को ले जाया गया है। ये थे रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर इगोर नाशेनकोव के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी ने कथित तौर पर सेना, वायुसेना और नौसेना प्रमुखों को बर्खास्त कर दिया है। माना जा रहा है कि नाइजीरिया में चरमपंथी संगठन बोको हराम की गतिविधियों पर लगाम न लग पाने की वजह से ये कदम उठाया गया है। पिछले 10 दिन में नाइजीरिया में हुए चरमपंथी हमलों में कथित तौर पर 220 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ताजा हमला कैमरून और नाइजीरिया की सीमा के करीब हुआ, जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक स्टोर में संभवतः लूट के इरादे से घुसे 3 बंदूकधारियों को पुलिस तलाश रही है। इन बंदूकधारियों ने स्टोर में 18 लोगों को बंधक बना लिया था, जिन्हें बाद में विशेष सुरक्षा बल के सदस्यों ने छुड़ा लिया था। ये घटना पेरिस के वील नोव ला गारेन इलाके में कपड़े के एक स्टोर की है। सोमालिया में चरमपंथी संगठन अल शबाब के चरमपंथियों ने एक सैनिक बेस पर हमला किया, जिसमें 4 सैनिकों की मौत हो गई। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल रंजन, bbchindi.com और मोबाइल पर भी। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जो आ रही हैं ग्रीस से। रात भर चली मैराथन बैठक के बाद यूरोजोन के वित्त मंत्रियों में ग्रीस को सहायता देने पर सहमति बन गई है। ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने कहा कि उनकी सरकार यूरोजोन के साथ बातचीत के जरिए एक बड़े आर्थिक संकट से निपटने में कामयाब रही। करार पर फैसला आने के बाद कई यूरोपीय देशों के प्रमुख नेताओं ने इसे सही बताया, हालांकि ग्रीस में इस पर लोगों की प्रतिक्रिया मिलीजुली थी। अभी यूरोजोन के कई देशों की संसदों को राहत पैकेज को मंजूरी देना बाकी है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी खबरों का सार सुनिए वैभव श्रीवास्तव से।
सिंफोनिया इन दिस्कोले ओमोस अपोत्रेप्सामे।
ये आवाज थी ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास की, जो बता रहे थे कि आर्थिक डील पर सहमति हो गई है और ग्रीस की सरकार सार्वजनिक संपत्ति को बाहरी हाथों में जाने से रोकने में कामयाब हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि बैंकिंग प्रणाली विफलता की ओर जा रही थी, परंतु अब कर्जे का पुनर्गठन होगा और कर्जा चुकाने के लिए ज्यादा वक्त मिल पाएगा। यूरोजोन के नेता ग्रीस को तीसरा राहत पैकेज देने के लिए समझौते पर पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये है कि ग्रीस को यूरोप द्वारा दिए जाने वाला आर्थिक सहयोग जारी रहेगा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जॉन क्लॉ यूंकर ने ग्रीस के यूरोजोन से बाहर होने की आशंकाओं पर कहा कि ग्रीस को यूरोप की साझा मुद्रा को छोड़ना नहीं पड़ेगा। वार्ता बहुत मुश्किल थी और इसमें बहुत वक्त लगा, परंतु अब बातचीत पूरी हो गई है। ग्रीस के संकट की शुरुआत से ही यूरोपीय कमीशन ने कहा था कि किसी भी तरह से ग्रीस को यूरोपीय संघ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बातचीत के नतीजे से हम सहमत हैं, ग्रीस यूरो से बाहर नहीं जाएगा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जॉन क्लॉ यूंकर के शब्द। ग्रीस को इससे पहले दो बार आर्थिक मदद मिल चुकी है, परंतु यूरोपीय देशों का कहना था कि ग्रीस ने मदद मिलने के बाद आर्थिक पैकेज की शर्तों को सही ढंग से लागू नहीं किया। अब ग्रीस बुधवार तक यूरोजोन की ओर से दिए गए प्रस्तावित सुधारों को लागू कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष क्रिस्टीन लगार्ड ने बातचीत सफल होने के बाद कहा,
फैसले के लिए ये बहुत अहम रात थी। लगता है कि भरोसा जीतने के लिए ये एक अच्छा कदम है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे कई और कदम उठाए जाएंगे, पर वो इस बात पर निर्भर करेगा कि शर्तों को किस तरह लागू किया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष क्रिस्टीन लगार्ड के शब्द। कर्जा देने वाले देशों और संस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अलावा जर्मनी और फ्रांस ने भी काफी भारी रकम दी थी। फैसला होने से पहले जर्मनी की ओर से सख्त शर्तें रखी गई थीं, परंतु समझौता होने के बाद जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल बातचीत के नतीजों से सहमत लगी।
समझौते की शर्तों को एक एक करके लागू करना जरूरी है, भरोसा दोबारा बनाना जरूरी है। अब ये ग्रीस की सरकार की राजनीतिक जिम्मेदारी है कि शर्तों को लागू करे।
जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के शब्द। डील पर फैसला आने के बाद ग्रीस के लोगों की कुछ मिलीजुली सी राय थी। एक और कुछ लोग इस बात पर खुश थे कि अब ग्रीस एक नए ढंग से आगे बढ़ पाएगा। वहीं कई लोगों को ऐसा लगा कि शर्तों के जरिए उनके साथ धोखा हुआ है।
मुझे राहत है क्योंकि डील पूरी हुई। हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। यूरो से बाहर जाने का फैसला बहुत गलत होता। मैं बहुत निराश हूँ। पहले कई बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, हमें उम्मीद की किरण दिखी थी। हम एक तरफ सोच रहे थे कि कुछ बुरा होगा, पर ये तो बहुत ही बुरा हुआ।
हालांकि समझौते के बारे में अभी अधिक जानकारी नहीं है, इतना तय है कि ग्रीस को अपनी मुद्रा ड्रॉकमा पर नहीं लौटना पड़ेगा। देखना होगा कि प्रधानमंत्री सीप्रास कैसे अपने सांसदों के सामने नए प्रस्ताव को रखते हैं और किस तरह से ग्रीस इन शर्तों को पूरा करता है।
यूरोजोन के वित्त मंत्रियों में ग्रीस को सहायता देने पर सहमति, रिपोर्ट सुना रहे थे वैभव श्रीवास्तव। दिनभर में अब कुछ खबरें भारत से ले लेते हैं। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की जांच का जिम्मा संभालने सीबीआई की टीम आज भोपाल पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई इसकी जांच शुरू करने जा रही है। भोपाल में स्थानीय पत्रकार शुरे नियाजी से मैंने थोड़ी देर पहले पूछा कि भोपाल पहुंचने के बाद सीबीआई की टीम ने आज सबसे पहले क्या किया।
सीबीआई की जो टीम थी, 40 सदस्यीय टीम है, कुछ जो अधिकारी थे इसके, ये सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट से भोपाल पहुंचे हैं। इसके अलावा दोपहर में भी काफी लोग जो सीबीआई की टीम में थे वो शताब्दी एक्सप्रेस से यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर जो एमपी पुलिस है और उसके अलावा जो स्पेशल टास्क फोर्स है जो व्यापम हमले के लिए जो बनी थी, उसके अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की है। कुछ दस्तावेज इन्हें मिले हैं उनके अधिकारियों से, और अभी जो बताया जा रहा है कि शाम में एक मीटिंग होने वाली है इसमें, जिसमें औपचारिक तौर पर इन्हें पूरा जो केस है व्यापम का, जो पूरा मामला है, वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
और क्या आपकी किसी अधिकारी से भी बात हो पाई है, वो लोग किस तरीके से इस जांच को शुरू करेंगे और ये लोग कहाँ अभी कहाँ रहे हैं, और क्या ये पूरी टीम जो है वो मध्य प्रदेश में ही रहेगी पूरी जांच होने के दौरान?
देखिए, जो टीम के अभी किसी भी जो सदस्य है वो अभी तो बातचीत नहीं कर रहा है मीडिया से, उन्होंने अभी दूरी बना के रखी हुई है। इस टीम में जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि आपको कि जो एंटी करप्शन ब्रांच जो है भोपाल जो एरिया आता है, इसमें चार जगह है, भोपाल, जबलपुर, भिलाई और नागपुर। तो यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, और अभी आज क्योंकि बहुत जल्दी होगा अभी बता पाना, लेकिन ये माना जा रहा है कि 5 से 6 टीमें ये अलग अलग बनाएंगे जो अलग अलग जगह पर जाएंगी, और खास तौर पर जो झाबुआ है वहाँ पर, जहाँ पर पत्रकार अक्षय सिंह की मौत हुई थी, इसके अलावा नम्रता डामोर जो हैं उनके लिए उज्जैन में जाएगी एक टीम। तो ये माना जा रहा है कि शुरुआती जो जाँच शुरू होगी, आज तो अभी सिर्फ बातचीत हो रही है और केस इनको ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा इनके लिए ये भी है कि थोड़ा सा इन्हें तेजी भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि 24 जो जुलाई है उसको इन्हें एक जो रिपोर्ट पेश करनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस बात को डिसाइड करेगी कि ये जो पूरा जांच है ये सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में होगी या हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में होगी। तो इसलिए इन्हें थोड़ी तेजी दिखानी पड़ेगी। हालांकि आज कुछ खास इन्होंने जो हुई है सिर्फ मीटिंग हुई है, और रात में जो एसटीएफ के साथ मुलाकात होगी तो उसमें औपचारिक तौर पर इसका ट्रांसफर होगा, और ये जो इनके पास जो 10 टन जो दस्तावेज हैं वो भी इन्हें दिए जाएंगे। दूसरी बात जो है कि ये देखना पड़ेगा कि एसटीएफ ने जो अब तक जांच की है उससे आगे सीबीआई है वो आगे लेकर जाएगी, कि ये शुरुआत से फिर से इसको जांच करेगी, जो बहुत से मामले हैं उसको लेकर संदेह की स्थिति रही है कि उसमें कहीं ना कहीं एसटीएफ जो है उसने कहीं ना कहीं ढिलाई बरती है, तो ये भी देखना पड़ेगा। अभी
व्यापम घोटाले की जांच का जिम्मा संभालने सीबीआई की टीम पहुंची भोपाल, जानकारी दे रहे थे शुरेनियाजी। इधर उड़ीसा के आदिवासी बहुल क्योंझर में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई है। अब तक मिली खबरों में कहा जा रहा है कि जादू टोना करने के संदेह में इन लोगों की हत्या गांव के लोगों ने ही की है। मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। पूरे ब्यूरो के साथ भुवनेश्वर से संदीप साहू।
ये सनसनीखेज घटना क्योंझर जिले के लहंडा पहाड़ के ऊपर बसे एक दुर्गम गाँव में कल रात घटी, लेकिन इसके बारे में आज सुबह ही पता चला। सूचना मिलने के बाद बड़बिल के पुलिस अधिकारी अजय प्रताप स्वाई जब साइंटिफिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर भौचक्के रह गए। घर के अंदर गूरा मुंडा और उसकी पत्नी बुधनी मुंडा और उनके 2 बेटों और 2 बेटियों की लाशें पड़ी हुई थी। सबसे छोटी बेटी नमिता केवल 3 वर्ष की थी। सभी के गर्दन किसी धारदार हथियार से काट दिए गए थे। पुलिस टीम को गंभीर रूप से घायल परिवार के 2 अन्य सदस्य भी मिले, जिन्हें तत्काल क्योंझर के जिला सदर अस्पताल में पहुंचाया गया। बाद में सभी 6 लाशों को भी पोस्टमार्टम के लिए क्योंझर सदर अस्पताल ले जाया गया। राज्य पुलिस प्रशासन ने मामले को काफी गंभीरता से लिया है और इसकी जांच क्राइम ब्रांच के सुपुर्द किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य के पुलिस महानिरीक्षक संजीव मारिक ने कहा,
पुलिस रो माने सीरियसनेस देखला पर डीएसपी को कोई चीज से डाको इन्वेस्टिगेट करिए और एसपी।
घटना की गंभीरता को देखते हुए मैंने क्राइम ब्रांच के डीएसपी को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया है और एसपी से कहा है कि उसकी निगरानी करें। पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच के एडीजी के देखरेख में होगी। हमने इसे रेड फ्लैग केस के रूप में लिया है। पुलिस महानिरीक्षक संजीव मारिक के शब्द। स्थानीय पुलिस से मिली सूचना के अनुसार इस मामले में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी लोगों की तलाश अभी जारी है। पुलिस के डर से लगभग पूरा गाँव खाली हो गया है। जादू टोना से जुड़े हत्याकांड उड़ीसा के आदिवासी इलाकों में आए दिन होते रहते हैं। हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार जादू टोना करने के आरोप में पिछले 5 वर्षों में 274 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने 2 साल पहले उड़ीसा प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग कानून पारित किया, लेकिन इससे स्थिति में कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आता। संदीप साहू, BBC, भुवनेश्वर।
बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव आज मार्च करने निकले। उनका कहना है कि जनसंख्या के आंकड़ों में पिछड़ी जाति से जुड़े लोगों का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया है और इसे लेकर वो आंदोलन करेंगे। लालू यादव ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की कड़ी आलोचना की, जबकि बीजेपी का कहना है कि पिछड़े लोगों की खराब हालत पर जवाब देने की बारी लालू यादव और कांग्रेस पार्टी की है। पटना से नीरज सहाय ने लालू यादव के मार्च पर ये रिपोर्ट भेजी है।
बिहार विधान परिषद के चुनाव में करारी हार के महज 3 दिनों के बाद खिसकती राजनीतिक जमीन को बचाने की कोशिश में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज जातीय जनगणना की रिपोर्ट के बहाने पटना की सड़कों पर अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया। जनगणना रिपोर्ट जारी करने की मांग को लेकर लालू प्रसाद के नेतृत्व में राजधानी के गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर से आर ब्लॉक तक राजद कार्यकर्ताओं ने मार्च किया। वहां सभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार जातीय जनगणना की रिपोर्ट को दबाए रखना चाहती है, ताकि दलितों और पिछड़ों को देश की आबादी में उनकी वास्तविक हिस्सेदारी का पता न चल सके।
इसमें
कौन जाति का है? 51% लोग मजदूर है पूरे देश में, जिनके बेटा और बेटी आप लोग हो, हम लोग हैं। भारत के गांव में हर तीसरा परिवार भूमिहीन है। 6 करोड़ आदमी भीख मांग करके पूजा करके जी रहा है। मंडल और कमंडल के विरुद्ध में लड़ाई होगी और सारे कमंडल को हम लोग फोड़ देंगे, वोट से फोड़ देंगे, ईटा से नहीं। ये नहीं, कमंडल धारी सब है, ये गणेश को दूध पिलाने वाला है। जब आपका पारी आया तो कितना चतुराई से कागज में चुरा कर टाप कर।
सभा के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राजभवन जाकर राज्यपाल के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। लालू के राजभवन मार्च में आए लोगों का कहना था कि
जब तक जातीय जनगणना प्रकाशित नहीं होगा, इस आंदोलन को हम बिहार के हर जिला में ले जाएंगे और प्रखंड भर ले जाएंगे, गांव-गांव में इस आंदोलन को फैला करके भारत सरकार को मजबूर करेंगे जातीय जनगणना प्रकाशित करने के लिए।
दूसरी ओर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता नंद किशोर यादव ने लालू के राजभवन मार्च को महज ड्रामा बताया।
पिछड़ी जाति का व्यक्ति, गरीब का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बन गया नरेंद्र मोदी के रूप में, और भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से लगातार गरीबों के कल्याण की योजना चला रहे हैं, सभी गरीबों के लिए पक्का मकान बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं, दूसरी योजना गरीबों के लिए चिन्हित की है, इससे इनको परेशानी हो रही है और इनको लगता है कि जो आज तक जाति के नाम पर राजनीति करते रहे तो नरेंद्र मोदी के उत्थान से इनकी राजनीति पर कुठाराघात होगा। इनको तो इस बात का जवाब देना पड़ेगा पहले कि जो आंकड़े प्रकाशित हुए सब प्रकार के कि बिहार के अंदर पिछड़ापन कितना बढ़ गया, गांव की हालत बिगड़ गई, गांव के गरीबों को के पास घर नहीं है। आखिर 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया देश के अंदर, 15 साल लालू जी ने भी राज किया, तो अपने राज करने के समय में इन्होंने क्या किया गरीबों के लिए।
वहीं जातीय जनगणना पर राजनीतिक सरगर्मियों के बीच वरिष्ठ पत्रकार कुमार दिनेश ने अपने राय रखे। उनके अनुसार
जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी करने की जो मांग हो रही है वो दरअसल एक गलत तथ्य पर आधारित है। तथ्य ये है कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट अभी तैयार ही नहीं हुई है और राजनीतिक कारणों से लालू प्रसाद और उनके सहयोगी दल इस रिपोर्ट को जारी करने की मांग कर रहे हैं, जबकि यूपीए सरकार के समय जब जनगणना, जातीय जनगणना कराने का फैसला किया गया था उस समय उस सरकार ने ही फैसला किया था कि सामाजिक और आर्थिक आंकड़े तो जारी किए जाएंगे लेकिन धर्म, जाति और जनजाति से संबंधित आंकड़े नहीं जारी किए जाएंगे, क्योंकि इन आंकड़ों का दुरुपयोग राजनीतिक कारणों से हो सकता है।
लालू प्रसाद जिस कद के नेता हैं उसके हिसाब से राजद के राजभवन मार्च में लोगों की हिस्सेदारी बहुत कम रही। पटना से नीरज सहाय।
सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर कुछ लोगों के अकाउंट बंद कर दिए गए। खबर यह है कि जिन लोगों के अकाउंट बंद किए गए वो लोग गाली गलौज कर रहे थे और भद्दी जबान में पोस्ट डाल रहे थे। हमारे सहयोगी सुशील झा बड़ी बारीकी से सोशल मीडिया पर नजर रखते हैं और काफी सक्रिय भी रहते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले उनसे पूछा कि ये पूरा मामला क्या है।
निखिल, होता यह है कि कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो कि जब आपने अगर कोई ट्वीट किया और अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी की आलोचना कर दी तो फिर आपके ऊपर गाली गलौज होने लगता है। तो ऐसे कई सारे अकाउंट हैं, कुछ लोग जो प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हैं, कुछ लोग केजरीवाल जी के समर्थक हैं। तो अभी ये हुआ है कि करीब 13 या 14 अकाउंट सस्पेंड किए गए हैं और इनको रिपोर्ट किया था एक अकाउंट जो है भक्त हंटर्स नाम से। तो प्रक्रिया ये होती है कि अगर आपको लगता है कोई अकाउंट गाली गलौज कर रहा है तो आप उस पर एक फॉर्म भरते हैं और ट्विटर को फॉर्म सबमिट करते हैं। फिर ट्विटर ये डिसीजन लेता है कि वाकई ये गाली गलौज हो रही थी, नहीं हो रही थी या नहीं, या क्या धमकी दिया गया था नहीं। तो इस तरह से ये जो अकाउंट है भक्त हंटर्स, इन लोगों का दावा है कि इन्होंने 13 अकाउंट सस्पेंड करवा दिए हैं। ऐसे ही एक और ट्विटर हैंडल है आप्टार्ड हंटर्स, तो उनका भी दावा है कि उन्होंने भी कुछ अकाउंट्स जो है सस्पेंड करा दिए हैं।
ट्विटर इस बारे में क्या कह रहा है कि उसने सचमुच किए हैं सस्पेंड इस तरह से?
ट्विटर का ये कहना है कि किसी पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में वो कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन उन्होंने पिछले कुछ समय में अपने जो उनके जो नियम हैं अकाउंट्स को सस्पेंड करने के उनमें बदलाव किया है और वो कहते हैं कि अब अगर कोई हिंसा की धमकी भी देता है तो वो उसको कुछ समय के लिए ब्लॉक कर देते हैं कि यूज़ ना कर पाए। पहले ब्लॉक नहीं होता था, उन्होंने माना कि कुछ अकाउंट्स ज़रूर ब्लॉक हुए हैं और ये अकाउंट्स कोई भी ब्लॉक कर सकता है। हम आप भी चाहें तो एक शिकायत कर सकते हैं ट्विटर में कि ये अकाउंट गाली गलौज कर रहा है और इसको बंद कर दिया जाए। तो फिर ट्विटर जांच करती है, उसको लगता है कि वाकई ये शिकायत सही है तो वो उसको ब्लॉक कर देते हैं।
एक ये भी खबर आई थी कि कुछ लोगों के अकाउंट ब्लॉक किए गए थे और फिर तुरंत ही उनको खोल भी दिए गए, वो क्या मामला था?
असल में एक अकाउंट था महावीर _M नाम का अकाउंट था जिसको प्रधानमंत्री मोदी भी फॉलो करते हैं, तो उस अकाउंट से कुछ गाली गलौज जैसी बात हुई थी तो उसकी रिपोर्ट की थी और इन्हीं ग्रुप्स ने, भक्त हंटर्स ग्रुप ने, और उसको सस्पेंड कर दिया गया था। तो इसके समर्थन में ट्विटर पे 2 दिन तक अभियान चलता, जिसके बाद उस अकाउंट को फिर से रिवाइव कर दिया गया। तो इसी को लेके ये पूरा का पूरा फिर सारे जो इस तरह के अकाउंट्स थे उनको रिपोर्ट किया जाने लगा और ये फिर पूरी एक मामला बन गया ये पूरा।
सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर कुछ लोगों के अकाउंट बंद कर दिए गए हैं और उसके बारे में जानकारी दे रहे थे सुशील झा। दिनभर आप सुन रहे हैं बीबीसी रेडियो पर निखिल रंजन के साथ, और अब अगली खबर पाकिस्तान से है, जहां कबायली इलाके में पहली बार अल्पसंख्यक समुदाय के 4 लोगों को वरिष्ठ नागरिकों का दर्जा दिया गया है। पाकिस्तान में इन्हें मलिक कहा जाता है और इनके पास दस्तावेजों को प्रमाणित करने जैसे कुछ अधिकार होते हैं। इसका क्या असर हो सकता है, ये जानने के लिए पेशावर से हमारे सहयोगी रिफत औरकजई की ये रिपोर्ट सुनिए।
कमिश्नर पेशावर की जानिब से हाल ही में खैबर एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाले 4 गैर मुस्लिमों को कबायली मलक या मशर का दर्जा दिया गया है। इनमें 2 अफराद का ताल्लुक ईसाई बिरादरी और 2 का सिख कम्युनिटी से है। इन अकलियतों को अब मुसलमान कबायलियों के बराबर हुकूक और मराद दिए जाएंगे। कबायली मलक का दर्जा हासिल करने वाले ईसाई बिरादरी के बाशिंदे मलक विल्सन वजीर ने BBC को बताया कि इस फैसले से फाटा में मुकीम तमाम अकलियतों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
खबर एजेंसी के हमने एक दिन उनसे एक मीटिंग की थी, एक मुलाकात की थी, और उसमें हमने उनसे एक डिमांड की थी कि जिस तरह ये खबर एजेंसी में शुमारी है, अकलीदी है, सलमानी है, इन लोगों के लिंगी होल्डर हैं, मदद करें, दिगर बैग हैं, मसरान हैं, तो इस तरह हमारी कम्युनिटी में से भी लिए जाए, उन्होंने हमारा मुतालबा तस्लीम किया। और फिर
मलक विल्सन वजीर के मुताबिक पहले वो एक मामूली सी दस्तखत या किसी फार्म की तस्दीक के लिए कबायली मशरान के पास जाकर उनकी मिनट समाजत किया करते थे, लेकिन अब उनकी कम्युनिटी को शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवाने में किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना होगा।
इससे ये फायदा होगा कि हम अपने लोगों की जो वेरिफिकेशन शनाख्ती कार्ड है, जो मिसाइल है, पासपोर्ट है या दीगर दस्तावेजात है, वो भी खुद दस्तखत कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर हमारी कम्युनिटी में कोई तनाजा आता है, कोई जिरगा बनता है, तो अपनी कम्युनिटी के बारे में हम खुद फैसला कर सकते हैं। फिर आपको पता है कि सदर है, वजीर आजम है, गवर्नर है, इनके अक्सर फाटा के मुतालिक कई प्रोग्राम होते हैं जिसमें लिंगी होल्डर्स को बुलाया जाता है, मलिक को बुलाया जाता है, तो उसमें भी मतलब ये कि हम जा सका करेंगे।
ख्याल रहे कि कबायली इलाकों में पाकिस्तान बनने के बाद से अकलियतों की एक बड़ी तादाद मुकीम रही है, जिनमें सिख, हिंदू और ईसाई बिरादरी के अफराद शामिल हैं। ताहम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वजह से उन्हें भी मुश्किलात का सामना रहा, जिसकी वजह से कई सिख और ईसाई खानदान कबायली इलाके छोड़कर शहरी इलाकों में मुंतकिल हुए। इनमें बेशतर अफराद पंजाब और मुल्क के दिगर शहरों में भी पनाह ले चुके हैं। ये अमर भी अहम है कि फाटा और खैबर पख्तूनख्वा में दिगर अकलियतों के मुकाबले में सिखों की तादाद सबसे ज़्यादा बताई जाती है, जबकि दूसरे नंबर पर ईसाई कम्युनिटी के लोग आबाद हैं। ताहम कबायली इलाकों से सिखों की बेदखली के बाद इनमें ज़्यादातर ख़ानदान आजकल पेशावर में पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं। रिफतुल्ला उर्गजई, BBC पेशावर।
और अब आपकी राय।
नमस्कार श्रोताओं, आपकी चिट्ठियों के साथ मैं संदीप सोनी और मेरे साथ हैं आज राजेश प्रियदर्शी।
नमस्कार।
चिट्ठियों का सिलसिला शुरू करें इससे पहले माफी चाहेंगे हम शब्बीर खन्ना से, जो सऊदी अरब में रहते हैं, हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं। बीते दिनों एक पत्र के सिलसिले में हमसे चूक हुई, पत्र किसी और का था और उस पत्र के साथ शब्बीर भाई का नाम चला गया।
जी, उस कार्यक्रम में मैं भी शामिल था और मैं माफ़ी चाहता हूँ शब्बीर खन्ना साहब से। और हमने पिछला जो कार्यक्रम था आपकी राय का, उसमें शुरुआत में ही वो सबसे पहले वो चिट्ठी पढ़ी थी और हम यहाँ इस कार्यक्रम में शुरुआत इसीलिए इसी जगह से कर रहे हैं ताकि हम शब्बीर भाई को ये बता सकें कि वो एक हड़बड़ी में हुई एक गलती थी जिसकी वजह से वो उन्हें बुरा लगा, जिसका हमें अफसोस है।
और यकीन इस बात का है कि शब्बीर खन्ना पत्र हमें लिखते रहेंगे। पहला पत्र ले रहे हैं रामचंद्र सुथार का, जैसलमेर राजस्थान से। रामचंद्र लिखते हैं कि रविवार को विशेष प्रस्तुति फैला उजियारा की पहली कड़ी, जो महात्मा बुद्ध पर केंद्रित थी, बहुत अच्छी लगी। उम्मीद करता हूँ बीबीसी हिंदी आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम हमें सुनवाता रहेगा।
फैला उजियारा अपने आप में एक विशेष कार्यक्रम है और भारतीय मूल के प्रोफेसर सुनील खिलनानी जो ब्रिटेन में रहते हैं उन्होंने रेडियो 4 की मदद से बीबीसी के लिए इसे तैयार किया है। उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को चुना है जिन्होंने वो भारत बनाया, भारत के लोगों का वो मानस तैयार किया जिसकी वजह से आज भारत पूरी दुनिया में जाना जाता है। उसमें गौतम बुद्ध भी हैं, उसमें कबीर भी हैं, उसमें मीराबाई हैं और ऐसे ढेर सारे लोग हैं। तो सुनिएगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको आगे वाली कड़ियाँ भी पसंद आएंगी।
दूसरा पत्र ले रहे हैं सुरेंद्र सिंह का, नौगांव असम से आया है। सुरेंद्र जी लिखते हैं कि फैला उजियारा में पहली कड़ी में महात्मा बुद्ध पर मोहनलाल शर्मा की प्रस्तुति काबिले तारीफ है। गुरुदत्त पर रेहान फजल की विवेचना बहुत अच्छी लगी। दुनिया जहान में निखिल रंजन से ईरान के बारे में काफ़ी कुछ नया सुनने को मिला, लेकिन एक शिकायत है। शिकायत ये कि बीबीसी हिंदी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली और ऐसी ही हिंदी भाषी राज्यों को कवर करती है, ऐसा क्यों?
आपने इतनी तारीफ की, उसके बाद जो आपने शिकायत की है वो उस शिकायत सराखों पर। जब भी कोई बड़ी खबर होती है, जब भी कोई बड़ी घटना होती है, वो असम में हो या फिर दक्षिण भारतीय राज्यों में हो या अन्य राज्यों में हो, हम उसकी तरफ ज़रूर ध्यान देते हैं। लेकिन ये सच है कि हमारे ज़्यादातर हिंदी भाषी श्रोता इन्हीं राज्यों में हैं जिनका आपने नाम लिया। तो जहाँ पर बड़ी तादाद में सुनने वाले लोग हैं वहाँ की घटनाओं पर जाहिर है कि हमारा ध्यान रहता है, लेकिन हम पूरे भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रसारण करते हैं। और माली में और चाड में जहाँ हमारे श्रोता नहीं है, वहाँ की भी अगर कोई बड़ी घटना होती है तो हम उसको ज़रूर रिपोर्ट करते हैं। आपकी ये जो शिकायत है इसको और गंभीरता से लेंगे, हालांकि हम अब भी ये स्वीकार करते हैं कि पूर्वोत्तर भारत या दक्षिण भारत का हमारा कवरेज वैसा नहीं है जैसा हिंदी भाषी राज्यों का है, और उसकी वजह मैंने आपको बताई अभी।
लेकिन सुरेंद्र नाथ सिंह की ये चिट्ठी बताती है कि हमें बीबीसी हिंदी को असम में भी सुना जाता है।
जी, बीबीसी हिंदी को असम में, खाड़ी के देशों में, नेपाल में, यहाँ तक कि जो हमारे रीब्रॉडकास्टर्स हैं उनके जरिए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर जगह सुना जाता है।
अगला पत्र ले रहे हैं रविंद्रनाथ ठाकुर हजारीबाग झारखंड से। ये लिखते हैं बीबीसी में कई बदलाव देखने को मिले हैं, अच्छे लग रहे हैं बदलाव। आपके अपेक्षाकृत नए पत्रकार हैं, काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक जगत की खबरों का कोई नियमित स्तंभ नहीं है आपके पास। ग्रीस के आर्थिक संकट पर काफ़ी कुछ सुनने पढ़ने को मिला, लेकिन विवेचना और दुनिया जहान की तरह अर्थ जगत जैसा स्थायी स्तंभ प्रस्तुत करें तो बड़ी मेहरबानी होगी।
आप इसी तरह से अपनी राय हमें भेजते रहिए, हमें इंतज़ार रहता है आपकी चिट्ठियों का, आपके ईमेल का। अगर आप हमें डाक से चिट्ठी लिखना चाहें तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 11003। और अगर ईमेल से हमें आप अपनी राय भेजना चाहें तो पता है hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
नमस्कार।
कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण बीच में 1-1.5 मिनट तक आप हमारा कार्यक्रम नहीं सुन पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और अब आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार।
ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास तीसरे बेलआउट पैकेज के लिए खर्च में कटौती की कड़ी शर्तों पर सहमत हो गए हैं। सर्बिया के शहर ओम्स्क में रूसी सेना के बैरक्स का एक हिस्सा गिर पड़ने से 20 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
दिनभर में आज इतना ही, आपसे अगली मुलाकात होगी 1.5 घंटे बाद घटना चक्र में। नमस्कार।